प्यारे साथियों नमस्कार। AFEIS के आज 23 दिसंबर 2019 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और स्वागत करता हूं शंकर कुमार का, जो नवादा बिहार से हैं, जिन्होंने एकेडमी की 15 से 29 मार्च के बीच होने वाली क्लास के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। दोस्तों आज सोमवार है और सोमवार को मैं खासकर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन से जुड़े किसी विषय पर आप सबसे बातें करता हूं। तो आज मैं आपसे बात करूंगा त्रिवर्षीय योजना को लेकर, लेकिन आइए इससे पहले कुछ दूसरी खबरों को देख लेते हैं। कल के चाहे वो दूरदर्शन का चैनल हो या न्यूज हो या आज के अखबार हो, जो सबसे महत्वपूर्ण खबर है वो आपने देखी है, प्रधानमंत्री का एक उद्बोधन नहीं कहना चाहिए, एक सभा आयोजित की गई थी जिसमें उन्होंने भाषण दिया और बहुत ही जोशीले अंदाज में भाषण दिया। उस अगर आप भाषण का स्ट्रक्चर आप महसूस करना चाहेंगे, मैं महसूस करने की बात कर रहा हूं, तो आप देखेंगे कि उसमें प्रधानमंत्री जी कहीं आक्रोश में हैं, कहीं भावनात्मक आवेश में हैं और कहीं उतने ही तार्किक भी हैं। बातें उन्होंने बड़े तार्किक रूप से रखी हैं। देखिए, जो आप दो मुद्दे अभी हैं NRC का और CAA का, यानी कि नागरिकता रजिस्टर जो हमारे यहाँ होने की बात कही जा रही है, राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर और दूसरा फिर अभी जो नागरिकता संशोधन कानून है, इसको लेकर के मुझे लगता है कि आपके दिमाग में बहुत से भ्रम बनने शुरू हो गए होंगे, क्योंकि लगातार ये मामला चल रहा है, अलग अलग तरीके से फैलता चला जा रहा है और इस पर ढेर सारी बातें भी आ रही हैं। जब आप सिविल सर्विस के लिए तैयारी करते हैं तो आपकी समझ में नहीं आता कि इसमें से कौन सी चीज़ आपके काम की है, आप किस तरीके से अपना ओपिनियन बनाएं, किस तरीके से चीज़ों को नोट करें। ये संकट अभी आपके सामने आ रहा होगा, कोई बात नहीं, बिल्कुल परेशान मत होइए। जब बारिश होती है और बाढ़ आती है तो उसमें सारी चीज़ें बहती हैं, चीज़ें धीरे धीरे थमेंगी। अभी जो हमारे पास आर्टिकल्स आ रहे हैं, एडिटोरियल कमेंट्स भी आ रहे हैं, वो भी कहीं एक तो भावनात्मक आवेश में आ रहे हैं या हमारा जो अपना एक दृष्टिकोण होता है, हम अपने उस दृष्टिकोण को अपने लेखन के जरिए सामने रखते हैं, लेकिन चीज़ें धीरे धीरे स्पष्ट होंगी, एक कोहरा धीरे धीरे साफ होगा, इसलिए आप इसको लेकर बिल्कुल परेशान न हो। अभी आप सुनते जाइए, देखते जाइए और पढ़ते जाइए। कल प्रधानमंत्री जी ने जो दो तीन बातें स्पष्ट कही हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा। पहला तो देखिए, उन्होंने बहुत क्लियर किया है कि NRC और CAA दोनों अलग अलग हैं और इसके बारे में हम लोग पहले भी बातें कर चुके हैं। दूसरी बात उन्होंने जी कही कि जो नागरिक हैं हमारे देश के, वो CAA से प्रभावित नहीं होंगे, मतलब जो ऑलरेडी भारत के नागरिक हैं उनको इससे डरने घबराने की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि इसका उनसे कोई लेना देना नहीं है। इसका संबंध तो सिर्फ उन तीन देशों के अल्पसंख्यकों से है जो वहां से प्रताड़ित होकर, धार्मिक प्रताड़ना के शिकार होकर के भारत में आए हुए हैं, यानी कि जिनके पास नागरिकता है उनकी नागरिकता छीनने से इसका दूर दराज का कोई संबंध नहीं है, इसका तो संबंध नागरिकता देने से है। अगली बात उन्होंने कही कि NRC के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है, ये उन्होंने पहली बार इस तरह से शायद कहा, वो शायद मैं इसलिए जोड़ रहा हूं कि हो सकता है कि मुझसे मिस हो गया हो, क्योंकि इससे पहले जो गृहमंत्री थे वो लगातार कहते थे कि नहीं, NRC लागू होगा, पूरे देश में लागू होगा, इस तरह की बातें हो रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इसके बारे में अभी इस तरह की कुछ बात उन्होंने कही है कि निर्णय नहीं लिया गया है, निर्णय लिया जाना है या जो भी हो, खैर वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो CAA। इसी के साथ ही साथ एक बात और भी आ रही है, वो है डिटेंशन कैंप को लेकर के, जिसे आप हिरासत शिविर कह सकते हैं, यानी कि जी पता लगा कि ये देश का नागरिक नहीं है तो अब आप क्या करेंगे, किसी बाहर दूसरे देश से आया हुआ है तो आप तुरंत उसे दूसरे देश में भेज नहीं सकते क्योंकि वो देश लेने को तैयार है या नहीं है, ये बातचीत चलेगी तो आप उसे रखेंगे कहां। तो उसके लिए कहा जा रहा है कि डिटेंशन कैंप बनाए जा रहे हैं, यानी कि इस तरह के शिविर बनाए जा रहे हैं कि उस शिविर में उन सबको भेज दिया जाएगा। तो प्रधानमंत्री जी ने इसे भी नकारा है कि ये बिल्कुल अफवाह है, ऐसी कोई हिरासत शिविर नहीं बनाए जा रहे हैं। तो ये प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य है, तो ये आपके दिमाग में मुख्य तथ्य के रूप में रहना चाहिए क्योंकि प्रधानमंत्री कह रहे हैं, है ना, प्रधानमंत्री मतलब हमारे देश की सरकार के जो प्रमुख हैं वो कह रहे हैं, और अगर वे कुछ भी कहते हैं तो वह मायने रखता है। देखिए, मायने रखता है, खासकर आपके लिए रखता ही है क्योंकि आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, वैसे तो देश के हर एक नागरिक के लिए मायने रखता है। दोस्तों, एक जो दूसरी खबर है जो अखबारों में छपी है और न्यूज़ में भी है वो आतंकी फंडिंग को लेकर के। एक इंटरनेशनल एजेंसी है, संगठन है, उसका नाम आप लोगों ने इससे पहले भी सुना होगा, वो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, FATF, फाइनेंशियल ए एक्शन टी टास्क एफ फोर्स। तो ये एक संस्था है, या कह लीजिए कि बल है, फोर्स है, एक दबाव डालने वाली संस्था है। इसका जो मुख्य काम है वो ये देखने का है कि जो देश हैं वो खासकर आतंकवादी संगठनों को कितना सपोर्ट कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात जो सपोर्ट की है वो फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं, वो इस बात की निगरानी रखती है कि ये जो आतंकी संगठन है इनको कहाँ से पैसा मिल रहा है। आपको मालूम है कि पाकिस्तान उनके हिट्स लिस्ट में है, उन्होंने पाकिस्तान से लगातार जवाब वो मांगते रहे हैं कि आप इन संगठनों को कितना पैसा दे रहे हैं कितना नहीं दे रहे हैं। भारत भी लगातार ये आरोप लगाता रहा, आरोप क्या मतलब वो सच भी है। तो अब उन्होंने फिर से पाकिस्तान से ये जानना चाहा है कि भाई आपको कहा गया था कि आप इन संगठनों पर कार्रवाई करें, आपने किया या नहीं किया, और जो प्रतिबंधित संगठन थे, जो मदरसे थे, उनको लेकर के आपने क्या कदम उठाए हैं। और देखिए, अगर ये संगठन संतुष्ट नहीं होता है जवाब से, तो फिर इस देश को दूसरे देशों से जो वित्तीय सहायता मिलती है उसके मिलने में बहुत कठिनाई आती है। ये सामान्य सी बात नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के आतंकवादी गतिविधियों से हम सब परेशान हैं, हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को भी थ्रेट मिलता है, लगातार हमारी जो कश्मीर वाली जो सीमाएं हैं वहां की झड़पें होती रहती हैं, आपको मालूम है। तो ऐसी दृष्टि में अगर पाकिस्तान के साथ कोई ऐसी बात हो रही है तो डेफिनेटली वो हम सब के लिए बहुत महत्व रखती है, और खासकर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए। दोस्तों, एक बहुत खूबसूरत छोटा सा एक आर्टिकल छपा है, न्यूज आर्टिकल ही है दैनिक भास्कर में, बेंगलोर को लेकर के, कि बेंगलोर से लगभग 125 किलोमीटर दूर एक बड़ा प्यारा सा गांव है कोक्केरबेल्लूर, छोटा सा गांव है, 2000 की यहां आबादी है। और यहां की जो सबसे इंपॉर्टेंट जो खबर है ये है कि इस आप कह लीजिए कि दिसंबर के आसपास खासकर दो तरह के पक्षी होते हैं वो इस गांव में आने शुरू करते हैं, और इन पक्षी का नाम है पेंटेड स्टार्क और पेलिकन। तो ये जो गांव वाले हैं इन दोनों पक्षियों को अपनी बेटियां मानते हैं, ये इस गांव में आते हैं और बकायदे पेड़ों पर अपने घोंसले बनाते हैं, वहां वो अंडे देते हैं, फिर वो बच्चे निकलते हैं, और जब 4-6 महीने में ये जब बच्चे उड़ने लायक हो जाते हैं जुलाई के आसपास, तो ये सारे पक्षी अपने बच्चों के साथ उड़ करके चले जाते हैं। तो इन पक्षियों को बेटियां क्यों मानते हैं ये गांव वाले, क्योंकि मालूम है कि बहुत से समुदायों में ये परंपरा है कि जब उनकी बेटी गर्भवती होती है तो जो अपने मायके चली जाती हैं जहां उनका प्रसव होता है, मायके में जाकर के, तो ये माना जाता है ये गांव उनका मायका है, तो यहां वो प्रसव के लिए आते हैं। तो ये तो एक स्टोरी हुई, लेकिन मैंने इसको सिविल सर्विस के तहत क्यों रखा है, क्योंकि ये कर्नाटक का अकेला ऐसा गांव है जिसे हम कहते हैं कम्युनिटी रिजर्व। एक कम्युनिटी रिजर्व क्या है फ्रेंड्स? जो आप संरक्षण के तहत, पर्यावरण संरक्षण के तहत जो आपका सिलेबस है उसमें आप बहुत से ऐसे संरक्षण के उपायों के बारे में पढ़ते हैं, नेशनल पार्क के बारे में आप पढ़ते हैं, सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में आप पढ़ते हैं, रिजर्व फॉरेस्ट के बारे में पढ़ते हैं, इसी तरह से आप बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में पढ़ते हैं, उसी के तहत आता है कंजर्वेशन रिजर्व और कम्युनिटी रिजर्व, उसी के तहत आता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि कंजर्वेशन रिजर्व क्या है और कम्युनिटी रिजर्व क्या है। और ये जो मैं पक्षियों का अभी जो आपको मैंने किस्सा सुनाया है, मैंने कहा कि ये कम्युनिटी रिजर्व है। देखिए, जो रिजर्व है, कम्युनिटी और कंजर्वेशन रिजर्व, थोड़ा सा मैं आपको अंतर बता दूं, ये दोनों रिजर्व ही होते हैं, खासकर ऐसे क्षेत्र जो आप कह लीजिए कि नेशनल पार्क में भी नहीं आए हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी नहीं है, तो उनके बीच के जो हिस्से हैं उसको सरकार इस तरह से डिक्लेयर कर सकती है। लेकिन दोनों में एक जो बेसिक फर्क है वो है कि जो कंजर्वेशन रिजर्व है, जिसे संरक्षण आगार कहते हैं, संरक्षण आगार इसका हिंदी में अनुवाद है, उसको जो जमीन है उस जमीन पर मालिकाना हक गवर्नमेंट का होता है, लेकिन जो कम्युनिटी रिजर्व है इस पर जो हक है जमीन का वो कम्युनिटी का होता है, लोगों का होता है, यहां लोग रहते हैं, हालांकि नाम रिजर्व है, लेकिन लोग रहते हैं, अपनी गतिविधियां करते रहते हैं, उनके अधिकारों का कोई अतिक्रमण नहीं किया जाता। लेकिन जो सबसे अच्छी बात है कि यहाँ जो वनस्पतियां हैं, जो पेड़ पौधे हैं, जो जीव जंतु हैं, उनके संरक्षण का जो दायित्व है वो ये कम्युनिटी ही लेते हैं। अब आप समझ गए, संरक्षण का दायित्व कम्युनिटी ही लेते हैं। तो यहाँ पक्षियों का दायित्व किसने लिया हुआ है? गांव के लोगों ने लिया हुआ है, और वो गांव के लोगों की ही जमीन है, तो इसे घोषित किया गया है कम्युनिटी रिजर्व। ये जो बारीक अंतर है इन सब में, वो आपको मालूम होने चाहिए, और इस पर अक्सर प्री में भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और मेंस में भी पूछे जाने की संभावना रहती है। मित्रों, अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर, और वह है 3 वर्षीय योजना। अब जैसे जैसे प्री एग्जाम के डेट नजदीक आते जा रहे हैं, मेरे पास ऐसे मेलों की संख्या अब लगातार बढ़ने लगी है कि सर, मैंने एक सप्ताह से ही परीक्षा की तैयारी शुरू की है और मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इसको क्लियर करना चाहता हूं, तो मुझे प्लीज हेल्प मी। इस तरह के खूब सारे आ रहे हैं। दोस्तों, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, जिनके दिमाग में भी इस तरह की बात है कि कोई उनकी हेल्प कर दे कि वो 4-6 महीने में आईएएस बन जाएं, कि आईएएस परीक्षा को लेकर के आपके दिमाग में क्या धारणा है? क्या धारणा है का मतलब है कि क्या यह बहुत ही सरल परीक्षा है, या मध्यम दर्जे की परीक्षा है, या थोड़ा बहुत पढ़ करके इसको क्वालिफाई किया जा सकता है, या एक ऊंचे दर्जे की परीक्षा है? परीक्षा क्या मतलब प्रतियोगिता है कहना चाहिए, या ये बहुत कठिन प्रतियोगिता है? दिमाग में धारणा क्या है, पहले तो ये आपको स्पष्ट करना चाहिए। और अगर स्पष्ट ना हो तो मैं बताना चाहूंगा कि यह एक कठिन परीक्षा है, यह एक ऊंचे दर्जे की परीक्षा है, ये आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। सामान्य परीक्षा नहीं है, और ये उस तरह की भी परीक्षा नहीं है जिस तरह की हम सामान्य तौर पर कॉलेज यूनिवर्सिटीज वगैरह में दे करके आते हैं, क्योंकि यहाँ एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट है। ऊपर से देखने पर आपको लगेगा कि यार ये सब तो वही है, लेकिन ऐसा है नहीं। यहाँ प्रश्न के उत्तर आप रट करके नहीं दे सकते, यहाँ उत्तर आपके दिमाग को क्रिएट करने पड़ते हैं, और यही इसका सबसे बड़ा चैलेंज है। अब ये मुझे बताइए कि जहाँ उत्तर आपको क्रिएट करने पड़ते हो, नंबर एक, और नंबर दो, जिसके 3 स्टेजेज हों, प्री क्वालिफाई करेंगे, मेंस क्वालिफाई करेंगे, फिर इंटरव्यू में भी आपको सेलेक्ट होना है। सेलेक्ट मतलब अच्छे मार्क्स लेकर के आने हैं, ताकि दोनों को मिला करके मेंस और इंटरव्यू को आप क्वालिफाइंग लिस्ट में शामिल हो सकें। तो जहां 3-3 स्तर हों, आपको क्या लगता है कि 4-6 महीने की पढ़ाई की तैयारी, 4-6 महीने की तैयारी करके आप क्वालिफाई कर लेंगे? क्यों ऐसा लगता है, क्यों आप ऐसे प्रश्न करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि आपको यह बहुत ही सामान्य सी परीक्षा लगती है। मैं थोड़ा सा सतर्क करना चाहूंगा कि प्लीज, अगर आप सच में सिविल सर्विस के बारे में गंभीर हैं, तो आपकी जो योजना है वो 3 साल की होनी ही चाहिए। 3 साल की बात मैं क्यों कह रहा हूं, 1 साल तो आप पूरी तरह से तैयारी में लगाइए, पूरी तरह से तैयारी कीजिए, पूरा जो आपका सिलेबस है अच्छे तरीके से उसे देख करके, समझ करके, जो आपके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर हैं, किस पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं, उन सब पर अच्छे तरीके से ध्यान दे करके और तैयारी कीजिए, पहली बात। इसके बाद आप सेकेंड ईयर में एंटर करेंगे। अब मुझे नहीं मालूम है कि आपका एग्जाम कब होगा, अब आप एग्जाम दीजिए। जब आप दूसरा साल में पहला एग्जाम देंगे, तब आप अपना मूल्यांकन करेंगे। हो सकता है कि उसमें सिलेक्शन हो भी जाए, और हो सकता है कि सिलेक्शन हो जाए तो आप अभी अपने को और अपग्रेड करना चाह रहे हैं, अपनी रैंकिंग बढ़ाना चाह रहे हैं, तो आपके पास अब अनुभव हो गया है। अब आप तीसरे अटेम्प्ट में बैठिए, तीसरा अटेम्प्ट दीजिए, पूरी तैयारी के साथ दीजिए, अनुभव के साथ दीजिए, तो हो सकता है कि आप अपने इच्छित डेस्टिनेशन को पा लें, जो आपने उद्देश्य निर्धारित किया था वहां तक पहुंच जाए। तो यहां तक पहुंचने के लिए एटलीस्ट 3 साल की योजना तो मुझे लगता है कि बनाई ही जानी चाहिए। हम ग्रेजुएशन करते हैं 3 साल लगते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं 2 साल लगते हैं, तो ऐसा हम कैसे सोच लेते हैं कि 6 महीने में हम आईएएस कर लेंगे? देखिए, चाहे आप कितने भी ब्रिलियंट स्टूडेंट रहे हों, आप टॉपर हों, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर आप केवल 6 महीने की इसकी तैयारी कर रहे हैं तो संभव होगा। हाँ, ये बात अलग है कि आप ग्रेजुएशन से या पोस्ट ग्रेजुएशन के समय से ही इसके बारे में सतर्क हैं और तैयारी करते आ रहे हैं, तब फिर बात अलग है, फिर तो कुछ भी हो सकता है, उसके बारे में मैं कुछ भी कहना नहीं चाहूंगा। लेकिन एक गंभीर विद्यार्थी के रूप में, एक गंभीर प्रतियोगियों के रूप में, मैं ये जरूर सजेस्ट करूंगा कि आप 3 साल की योजना बनाइए और उस पर फिर गंभीरता से अमल भी कीजिए। तो मित्रों, आज के मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और उन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं: विकास गुप्ता शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश से, मनीष कुमार पूर्णिया बिहार से, अनूप राज, सुरेश कुमार, तेजिंदर सिंह और सूरज वर्मा। आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।